नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणि व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्र प्रहर्तृ त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चै पदानां नियन्त्र त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षिरूपं नमाम सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम। देवियों सज्जनों, इस हफ्ते हमने 24 तारीख को शिवरात्रि मनाया, 21 तारीख को स्वामी दयानंद जी का जन्म दिवस था। भारतीय तिथि के हिसाब से फाल्गुन मास के 10वीं तिथि पर, और शिवरात्रि स्वामी जी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली रात्रि थी, जिसे हम बोध रात्रि के रूप में, नाइट ऑफ एनलाइटनमेंट के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। जनरली शिवरात्रि में आप लोगों को रात भर जगते हो, शिव मंदिर में जाते हो, दूध चढ़ाते हो, पानी चढ़ाते हो, कुछ लोग भांग खाते हैं, गंजा पीते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं, पर आज हम चर्चा करेंगे असली शिवरात्रि की, कि शिव कौन है और शिवरात्रि क्यों मनानी चाहिए और कैसे मनानी चाहिए। तो शिवरात्रि जनरली फाल्गुन मास के अमावस्या के दिन, मतलब जिसको आप डार्क मूनलेस लाइट कहते हो, उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, मंगल, भला, ऑस्पिशियस। प्रभु सबका कल्याण करता है, ईश्वर सबका कल्याण करता है। उसके लाखों नाम है, क्योंकि उसके अलग अलग एक्टिविटीज है, अलग अलग एडजेक्टिव्स है। एक प्रभु का नाम है शिव, क्योंकि वो सबका कल्याण करता है। दूसरा नाम उसको हम कहते हैं रुद्र, क्योंकि बड़ा भयंकर है, हर कोई उससे डरता है। अच्छे लोग उससे प्यार करते हैं, दुष्ट लोग उससे डरते हैं, क्योंकि पापों का फल मिलता है। और सिर्फ इतना नहीं, क्योंकि हमें मरना होता है और हम मौत से डरते हैं, मौत भी उसी के ही हाथ में है। सारा संसार वही बनाता है, पालता है, नष्ट भी वही करता है, इसलिए उसे डर भी लगता है, इसलिए उसे रुद्र कहते हैं। पर वो शंकर है, उसकी जो एक्टिविटीज है वो अच्छा करने वाला होता है। उसकी उस डिस्ट्रैक्शन में भी छुपा होता है शंकर, अच्छा करने का अभाव। जब किसी चीज का नष्ट नहीं होगा तो उसके जगह नई चीजें, नई क्रिएशन नहीं आ सकती ना। जब तक आप अपना पुराना घर छोड़ेंगे नहीं, तो नए घर का आनंद कैसे लेंगे? पुराने कपड़े छोड़ेंगे नहीं तो नए कपड़े का आनंद कैसे लेंगे? तो नए को एक्सेप्ट करने के लिए हमें पुराने को छोड़ने के लिए भी तैयार होना चाहिए। और ईश्वर वो सब कुछ करता है क्योंकि वो बाय नेचर शिव है, अच्छा करने वाला है, इसीलिए वो शंकर है। डिस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द नेचर है, इसीलिए उसे डर लगता है, क्योंकि हमें डिस्ट्रक्शन से डर लगता है, मरने से डर लगता है, क्योंकि वो भी काम वही करता है, इसीलिए वो रुद्र है। वो जो परमेश्वर है, ईश्वर, उसे हम महादेव कहते हैं, क्योंकि देवता के बारे में हमने पहले भी सुनी है। जिनका भी हमारे जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन है, वो सब हमारे लिए देवता हैं। पिता है, माता है, आचार्य है, पेड़ पौधे, हवा, पानी, आग, जो कुछ भी, सूरज, तारे, सब देवता है। पर इन देवताओं का भी कोई देवता है, इनका भी कोई एनलाइटनर है, इनका भी कोई प्रकाश करने वाला है, इनको भी कोई नॉरिश करता है, इनको भी कोई नर्चर करता है, इनको भी कोई क्रिएट करता है, इसलिए वो देवताओं का देव महादेव है। क्योंकि उसको समझना जानना मुश्किल है, क्योंकि वो टाइमलेस है, वो ट्रांसेंडेंट है, इसीलिए हमें उसकी जानने की जो प्रोसेस है उसके लिए हम उसी को हम आध्यात्मिकता कहते हैं, जिसमें आप योग, तप, यज्ञ बहुत कुछ करते हैं। जिनको पाने की इच्छा है वो बहुत कुछ करते हैं। ईश्वर को पाने की इच्छा, प्रभु को पाने की इच्छा हो, लोग पूरा जीवन बिताते हैं, कितने जीवन बिता लेते हैं उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए, पर हाथ नहीं लगता, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जो लिमिटलेस चीज है, जो ट्रांसेंडेंट है, वो हमारे जानने के लिए मुश्किल होता है। जो हमारे सेंसेस के लिमिटेशन के अंदर है वो तो इजी है, हम अपने आंख से नहीं देख सकते तो टेलीस्कोप से देखेंगे, टेलीविजन से देखेंगे। साइंस ने हमें बहुत हेल्प करता है, जहां आपकी सेंसेस नहीं पहुंच पाते उसकी पावर को काफी एक्सपेंड कर दिया है। आप किसी की बात सुन नहीं सकते नॉर्मल कान से, या बोलेंगे तो आपके रिश्तेदार नहीं सुनेंगे, पर आपकी कान की शक्ति को एक्सपेंड कर दिया फोन के द्वारा। आप देख नहीं सकते तो टेलीविजन के द्वारा, छोटी छोटी चीजों को देख नहीं पाते तो आपके लिए माइक्रोस्कोप बनाया। हजारों जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी सेंसेस की पावर को एक्सपेंड कर देता है, पर प्रॉब्लम है कि कितना भी एक्सपेंड करे उसका भी एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसीलिए हम ईश्वर को हम इन टेक्निकल चीजों के द्वारा नहीं पा सकते। आप गूगल में जाकर के सर्च करके पढ़ तो सकते हैं, सीडी लगा करके आप भजन तो सुन सकते हैं, आप स्काइप के द्वारा भारत में बैठे हुए पंडित जी से अमेरिका बैठ के हवन करा सकते हैं, शादी करा सकते हैं, लोग कराते हैं, रिकॉर्डेड मंत्र लगा करके पूजा कर सकते हैं, लोग ये सब करते हैं, मंत्र चल रहा है माइक में और आप टेप रिकॉर्डर में आप करते रहते हैं, पर ये आपकी एंटरटेनमेंट है, ये सब एंटरटेनमेंट है। आपके मन को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्योंकि आप एक खास तरह के चीजों में पले बड़े हैं, आपका माइंड एक खास तरह के चीजों को एक्सेप्ट करता है, तो कैसा भी मिले आप इसको एंजॉय करते हैं। एंजॉयमेंट माइंड के लिए होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे आप मूवी देख के एंजॉय करते हैं, आप कभी कभी पूजा करके भी एंजॉय करते हैं, अच्छा लगा, अच्छा लगा, वैसे ही जैसे फिल्म देख के अच्छा लगता है, खाना खा के अच्छा लगता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं अचीव होता है ना। अगर होता होता तो 50 साल से 60 साल से रोज रगड़ रहे और कुछ हो के नहीं रहा है। क्यों आपके मेरे और आपके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा है? क्यों मेरे मन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है? ये एंटरटेनमेंट हो गया, होता जा रहा है। प्रभु ईश्वर लिमिटलेस है, इसलिए उसको जानने के लिए भी हमें और आपको उस लिमिटलेस होना पड़ेगा। इतना बड़ा आकाश को आप कैसे जानोगे? समुंदर में मछली रहती है, बड़े बड़े मछली भी, शार्क भी रहते हैं, उससे भी बड़े बड़े कोई पानी में रहने वाले पशु रहते होंगे। बहुत दूर तक वो जर्निंग भी करते हैं, यात्रा करते हैं, चलते रहते हैं, हजारों माइल चलते हैं वो पानी में, उनकी जर्निंग चलती रहती है। पर तब भी वो दावा नहीं कर सकते ना कि समुंदर कितना बड़ा है। उनकी लिमिट से जितना भी वो यात्रा कर सकते हैं, समुंदर उससे भी बड़ा है। सज्जनों देवियों, समुंदर लिमिटलेस नहीं है, पर हमारे लिए वो पानी में रहने वाले जो प्राणी है उनके लिए वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। उनके वो कितनी भी लंबी जर्निंग करे, समुंदर को नाप पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आकाश को आप कैसे नापेंगे, स्पेस को कैसे नापेंगे? क्योंकि हमारी सेंसेस की लिमिटेशन है, और ईश्वर तो उससे भी ऊपर है। इसलिए क्या करना, ऋषि मुनियों ने कहा, आप इंद्रियों से परे जाओ, गो बियॉन्ड योर सेंसेस, उसको आप अतीन्द्रिय कहते हैं, ट्रांसेंडेंट नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो आप इंद्रियों के बिना पाएंगे, और उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिजिकल मेंटल आपकी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। उस मेंटल और फिजिकल एबिलिटी की बढ़ाने का जो नाम है उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसमें आप ध्यान, जप, तप, उपासना, भक्ति जो कुछ भी करते हैं। और करने के लिए हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई दिन चाहिए। बिजी लाइफ में हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग दिन निश्चित किया, अलग अलग तारीख निश्चित कर दिया, कम से कम इसी दिन तो ये करो। परमेश्वर को, उस प्रभु को भूतनाथ भी कहते हैं, नाथ कहते हैं स्वामी, ओनर, लीडर। अपभूताज, भूत मतलब प्राणी, जो कुछ पैदा हुआ वो सब भूत है, उन सब का स्वामी है, मालिक है भूतनाथ। जो हमारे शास्त्र में जो कंसेप्ट था, जो विचार था, पुराण की कहानियों में उसको एक फॉर्म दिया, उसका एक रूप दिया। अगर आप पुराण की उस स्टाइल को नहीं समझ पाते तो आप भटक जाएंगे, जैसे कि मोस्ट ऑफ हिंदू भटके हुए हैं, पुराण की इमेजिनरी स्टोरीज में फंसे रहते हैं, रियल शास्त्र की ओर ध्यान नहीं जाता, असली ईश्वर को छोड़ करके इमेजिनरी देवताओं में फंसे रहते हैं, लकड़ी से लेकर के पत्थर से लेकर इमेजिनरी पिक्चरों में फंसे रहते हैं। क्योंकि जो हमारे शास्त्रों की स्टाइल है वो खुद नहीं समझ पाते हैं। पुराण क्यों बना है, वेद क्यों बने थे, उपनिषद क्यों बने थे, वो शिव जो परम कल्याणकारी परमेश्वर है, वो शंकर है, रुद्र है, भूतनाथ पे, और वो सृष्टि और प्रलय का कारण है। उसी शिव को पूजने के लिए, पाने के लिए जो उपाय है वो साधना होती है, और उस साधना को करने के लिए आप नवरात्र में 9 दिन रात चुने, शिवरात्रि के 1 रात्रि चुने, या कोई भी साल भर के कोई भी दिन त्योहार आप चुने। अगर आप चुन नहीं सकते तो ऋषि मुनियों ने आपके लिए निश्चित किया ऐसे दिन में आप करिए। ये जो शिव की आपके दिमाग में पिक्चर है, फोटो देख के या आइडल्स या मूर्ति देख के या कुछ कहानियां, पुराण की कहानियां पढ़ के जो पिक्चर है, उस पिक्चर के पीछे भी एक रहस्य है जो शास्त्रों का विषय को पुराण उसको कैसे पर्सोनिफाई करके प्रेजेंट किया है, हम नहीं समझ पाते हैं तो फंस जाते हैं। वो परमेश्वर त्रिनेत्र वाला होता है, आप देखते हैं शिव के जो तीन आंखें होती हैं, सबके तो आपके दो दो आंखें हैं, क्यों? क्योंकि दो नॉर्मल आंखों में आम इंसान देखते हैं, वो परमेश्वर जिसका तीसरा आंख प्रतीक है कि जिसका जानने की शक्ति एक थर्ड लेवल की है, आपकी दो लेवल है उसकी थर्ड लेवल की है, जो ट्रांसेंडेंट है। एक बड़ी विचित्र पिक्चर आप देखेंगे शिव की, अर्धनारीश्वर, अर्ध कहते हैं हाफ, नारी कहते हैं वुमेन, ईश्वर मतलब पुरुष, मतलब एक ऐसा पिक्चर जिसमें आधी नारी है आधा पुरुष है, ये दुनिया में विरल है, रेयर है, शायद और कहीं है भी नहीं है कि एक ही व्यक्ति जिसके आधा नारी भाग है आधा पुरुष भाग है। ये हमारी और आपकी रियलिटी है। ये संसार दो अपोजिट चीजों से बनी है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, एक पुरुष तत्व एक स्त्री तत्व से। आपका परिवार दो अपोजिट कॉम्बिनेशन से बना है, एक पुरुष और एक स्त्री से, और आपका खुद का लाइफ दो अपोजिट चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, एक पुरुष तत्व एक स्त्री तत्व, एक आत्मा और एक शरीर है। आप किसको पुरुष कहेंगे स्त्री कहेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। और जो ईश्वर है वो ना ही है ना वो शी है, वो तो ही और शी से परे है। ऋषि मुनि उसको ईट कहते हैं, तत् संस्कृत में कहते हैं सह मतलब दैट ही, सा मतलब शी। और जो न्यूट्रल होता है, जो मेल फीमेल से ऊपर उठ के होता है, वो तत् है, तत्त्वमसि, वो परमेश्वर जो उपनिषदों में तत् के रूप में जाना जाता था, सारे जेंडर डिवीजन से ऊपर था। पुराण में उसको एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दिया कि वो पुरुष और स्त्री का मिलन है, तुम हो मैं हूं, मेरा और तुम्हारा परिवार हो, समाज हो, सृष्टि हो, सब नारी और पुरुष की मिलन है। नारी शक्ति का प्रतीक है, एनर्जी का, अगर यूनिवर्स में ढूंढेंगे तो एनर्जी है नारी तत्व, और ईश्वर है परमात्मा है पुरुष तत्व, आत्मा है नारी तत्व, और आपका शरीर है पुरुष तत्व। दोनों के मिलावट से कुछ बनता है, उसके बिना नहीं बन सकता। उस शिव को आदिगुरु भी कहते हैं, आदिगुरु फर्स्ट टीचर। हमारे यहां ट्रेडिशन रहा है कि जितने भी ज्ञान है, ज्ञान के जितने भी ब्रांचेस हैं, वो आर्ट हो, क्राफ्ट हो, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी फील्ड हो, जितने भी शास्त्र लिखे गए, शास्त्रकारों ने लिखा, सबने शुरू में यही कहा है कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, ऐसा तो हमने किसी से सुना था। अब पीछे चलते जाओ, सब कहेंगे हमने उससे सुना था, उससे सुना था। कोई ये नहीं क्लेम करता है कि ये मेरा अपना ओरिजिनल नॉलेज है। और वेद कहता है इस सब शास्त्रों का मूल परमेश्वर है। इसलिए आर्य समाज के पहले ही नियम में आप पढ़ते हैं ना, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जानी जाती हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। बढ़िया, यहां लिखा होगा आपके कोने में अंग्रेजी में हिंदी में, ये आर्य समाज का पहला नियम है कि सब ज्ञान का मूल तो परमेश्वर में, वो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, आदि गुरु है, उसी से सब ज्ञान चला है। तुम्हारा और मेरा कोई डायरेक्ट गुरु दूसरा हो सकता है, जिसने जिसके सामने से मैंने पढ़ा है, पर वो कहीं से सीखा, वो कहीं से सीखा, वो ज्ञान कहीं से लिया, जब हम कोई थे भी नहीं तो भी ज्ञान था, कहां था, उसका सपोर्ट सिस्टम कौन था, ईश्वर था। इसलिए उस परम तत्व को, उस शिव तत्व को, जो रियली शिव तत्व है, जो रियलिटी है, उस शिव तत्व को जानने के लिए जो समय हम चुनते हैं, जो प्रक्रिया हम चुनते हैं, वो साधना है। उस साधना को शिवरात्रि के दिन करने की जरूरत होती थी। शिवरात्रि शिव के एक और एक विशेष कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर है कि वो योगी है, शिव योगी है। उनके कपड़े क्या पहनते हैं, वो पिक्चर में आप देखेंगे, वो कपड़ों पेड़ों के जो बार्क्स होते हैं, छाल पहनते हैं, या मरे हुए जानवरों के छाल पहनते हैं, नंगा रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, ज्यादातर समय तो फ्यूनरल फील्ड में रहते हैं, शादीशुदा है, बच्चे भी हैं। मतलब एक आदमी गृहस्थी होकर भी सन्यासी जैसा जी सकता है, ये संदेश है। आपको योगी बनने के लिए गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी कोई जरूरी, ये तो नया कंसेप्ट है। देवियों सज्जनों ध्यान रखिएगा, ये जो मोंक कंसेप्ट हिंदुइज्म में है, भगवा पहनने के लिए, स्वामी पहले बाद में सरस्वती लगाने के लिए, बाबा बनने के लिए, ये हिंदू धर्म का एक नया थ्योरी है कि जो हमने अडॉप्ट किया है बुद्धिज्म से। ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं मिलेगा इस तरह के स्वामी अमुकानंद सरस्वती वगैरह। एक नई थ्योरी मॉडर्न हिंदुइज्म में बाद में आया। पहले तो था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में सन्यास ले सकता है, उसके लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक भी ऋषि मुनि आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी वेद से लेकर पुराणों तक कोई भी शास्त्र उठाइए, कोई कहानी उठाइए, कोई रामायण महाभारत उठाइए, कोई ऋषि को पढ़िए, पता लगे कि कोई ये बिना शादीशुदा का था, उसका नाम स्वामी अमुक वशिष्ठानंद सरस्वती, स्वामी विश्वामित्रानंद सरस्वती, कहीं मिलेगा आपको? कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, सब शादीशुदा थे जी। कोई अगर टर्च लेकर ढूंढने फिरे, लाखों में करोड़ों में गिन चुन के कोई दो या चार कैरेक्टर मिलेंगे, दो या चार गिन के करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनियों में, पूरे इंडियन हिस्ट्री में, हिंदू हिस्ट्री में मुश्किल से दो चार मिलेंगे जो शादीशुदा नहीं थे, बाय चांस बचपन से वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सब शादीशुदा थे, संन्यास भी लेते थे, योग साधना भी करते थे, ब्रह्मज्ञानी भी बनते थे। ये तो बुद्ध ने प्रचारक, बुद्ध को प्रचारक चाहिए था अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, उन्होंने मोंक बनाना शुरू किया कि उसको ब्रह्मचारी होना पड़ेगा, उसको ये रहना पड़ेगा, घर से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रचार करना है, अब मार्केटिंग करनी है। तो जो धर्म में मार्केटिंग का कंसेप्ट आया, तो हमें कुछ घर गृहस्थी छोड़ने वाले 100% फोकस्ड, जो काम पर फोकस करें, ऐसे लोग चाहिए। तो नया कंसेप्ट आया कि आप शादीशुदा नहीं कर सकते, अभी पर्टिकुलर कपड़े पहनेंगे। फिर धीरे वो जो मठ आश्रम का कंसेप्ट, आज का जो नया मठ आश्रम, आश्रम तो हिंदू धर्म में भी पहले से था, पर ऐसा नहीं कि आजकल जैसा आप देखते हैं। फिर धीरे धीरे उनसे नई सीख करके हमने भी शुरू कर दिया। शिव का जो कैरेक्टर आप देखते हैं पिक्चरों में, टीवी में, इधर उधर, वो उस प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र का स्वरूप है कि तुम गृहस्थी हो, परम योगी भी हो सकते हो, परम योगी हो, गृहस्थी भी हो सकते हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तुम अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अंदर परम योग तत्व को डिटैच्ड होकर के जी सकते हो, सारे सांसारिक ड्यूटी निभाते हुए भी अंदर बिल्कुल डिटैच्ड हो सकते हो। पद्म पत्र मिवाम भसा, संस्कृत में बोलते हैं, जैसे पानी में कमल का पत्ता हो, कमल का पत्ता पानी में ही होता है, पर कभी वो भीगा हुआ नहीं होता है, हमेशा सूखा हुआ होता है। पानी उस पर डाल दो, पानी निकल जाएगा, अगर जो बचेगा भी वो पानी ऐसे पानी का बूंद बन के वो हिलता रहेगा, पर कमल का पत्ता हमेशा सूखा मिलता है, पानी के अंदर रहता है तो भी सूखा मिलता है। हम तो सुखे के में रहकर भी गिला हो जाते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहकर भी करप्ट हो जाते हैं। महान वो होता है जो करप्ट के लोगों के बीच में रहकर भी अच्छा बना मिलता है, और हम तो सब अच्छा अच्छा है उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों सुधर नहीं पाते। हम पानी में कीचड़ फैला देते हैं और जो कीचड़ में कमल का पत्ता बन जाता है वो योगी कहलाता है। शिव उसका प्रतीक था। शिवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ डार्कनेस, उस अंधेरे का सेलिब्रेशन है, क्योंकि अंधेरा जो होता है वो लिमिटलेस होता है। लाइट का तो एक लिमिट है, जहां तक सूरज की रोशनी जाएगी, पर अंधेरा तो अनलिमिटेड है। पर आप जब तक अपने आप को उस अनलिमिटेड नहीं बनाओगे, जब तक आप अपनी इस लिमिटेड बॉडी से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप अपने इस लिमिटेड सेंसेस से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप उस लिमिटलेस तत्व को जान नहीं सकते हो। इसलिए आपको साधना करनी है, योग करना है, ध्यान करना है, तप करना है, उपासना करनी है, बहुत जरूरी है जीवन को जीने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये मेरा काम नहीं, मैं तो शादीशुदा हूं, मैं तो बच्चे वाला हूं, पोते पोतियां वाला हूं, नातिन नातिन वाला हूं, घर गृहस्थी वाला हूं, बिजनेस वाला हूं, नौकरी वाला हूं, ये मेरा नहीं है, वो तो उनका है। ये नया कंसेप्ट, ये बहानेबाजी है। कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। राजमहल में रह करके जनक सन्यासी था, मतलब आप राष्ट्रपति भवन में रहकर भी संन्यास जैसा जीवन जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शिवरात्रि जाना अपॉर्चुनिटी फॉर वन टू डिसॉल्व द लिमिट देयर लिमिटेडनेस, टू एक्सपीरियंस द अनबाउंडेडनेस, द सोर्स ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का जो मूल तत्व परमात्मा, विच इज द सीड इन एवरी ह्यूमन बींग, जो आप सबके अंदर है। इसीलिए जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत है, इसी तरह आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जिसको बहाना बना करके हम ईश्वर को पाने की इच्छा से भागते हैं, खुद को जानने की इच्छा से भागते हैं, उसको दबाने के लिए हमें उस आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। और वो आध्यात्मिक शक्ति साधना से आती है, तपस्या से आती है, कष्ट सहने से आती है, मानसिक कष्ट सहने से आता है। यही है शिवरात्रि को सेलिब्रेट करने का। किसी मंदिर में जाकर के दूध की बर्बादी करने से शिव पूजा नहीं होती है देवियों सज्जनों, भांग या गंजा खाने से नहीं होता है, उससे तो बर्बादी होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, मेंटली फिजिकली इंटेलेक्चुअली। मन करे जिस दिन रात को आप 4 घंटे साधना में बैठ गए, उस दिन आपकी शिवरात्रि हो गई। शिव मतलब मंगल है, उस दिन आपकी रात्रि धन्य धन्य हो गई। गीता में एक सुंदर श्लोक कहता है, यानीशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सानीशा पश्यतो मुनेः। जो सभी लोगों के लिए रात है, डार्कनेस है, अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं है, वो जो संयमी व्यक्ति है, जो अपने पर कंट्रोल रखता है, उसके लिए वो उसमें जगा रहता है, जगा रहता है। जब हम सब अपने घर परिवार धन संपत्ति यश कीर्ति में फंसे रहते, इन सबके अंधेरे में अपने असलियत को जान नहीं पाते, जो संयमी व्यक्ति इन चीजों में रहते हुए भी वो उसको जानता है, वो उस अंधेरे में रहते हुए भी जगा रहता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें लोग जगे रहते, संयमी व्यक्ति इसमें सो जाता है। ये मैटेरियल वर्ल्ड में वो सोया हुआ मिलता है, उसको ये नहीं पता होता है कि अखबार के आज का न्यूज क्या है, उसको ये नहीं पता होता है कि कल का शेयर क्या बनेगा, उसको ये नहीं पता होता है कि पड़ोसी में क्या बात हुई, पर उसको ये पता होता है कि मैं कौन हूं। जिसमें सभी लोगों का इंटरेस्ट है, उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, जिसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं, उसका उसी में ही इंटरेस्ट होता है, इसी को योगी कहते हैं। ऐसा ही एक योगी शिवरात्रि के दिन भी उसका बीज पड़ा था, जिसे मूल शंकर के नाम से हम जानते थे, बाद में वो स्वामी दयानंद बना। ये वही रात थी शिवरात्रि की, दूध चढ़ाने की, रात को 12 बजे तक जगे रहने की, फिजिकली बैठे रहने की, और रात को 12 बजे पूजा करके प्रसाद खाने की। शिवरात्रि इसी तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। कुछ ज्यादा भक्त बन जाएंगे तो भांग और गंजा खा लेते हैं। स्वामी दयानंद 13-14 साल का लड़का, वो भी माता पिता के साथ शिवरात्रि मनाने अपने गांव के शिव मंदिर में गए। चाचा, पिता, माता सबके साथ जगे रहे। रात भर जगना पड़ता है, प्रसाद रखा हुआ है, जगा पड़ता है। जगे कौन? जगने का नाम होता है वहां मंदिर में बैठे बैठे नींद लेते रहते हैं, झपकी लेते रहते, तो नेचर है। सब सो गए थे। दयानंद पहली बार माँ बाप ने उसको बोला था कि चलना है तो गया था। बोले क्यों? क्योंकि शिव की पूजा करते हैं, क्यों ना रात भर जगने से शिव मिलता है। वो बेचारा आम बालक था, उसको कुछ ज्यादा समझ नहीं था, और वो सोचा कि चलो रात को जगे रहने से शिव मिलता है, कुछ बड़ी बात होगी। तो वो जगा रहा बेचारा, इनोसेंट था, हमारे तरह हिपोक्रेट तो था नहीं है। वो बेचारा दिल का सच्चा था। करोड़ों बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, बिगड़ जाते हैं माँ बाप और समाज के कारण। जो माँ बाप सुधारने की कोशिश करते वही बिगाड़ते। तो दयानंद भी जगा रहा, बाकी लोग सोए हुए थे, सब सो गए थे मंदिर में बैठे बैठे जब करते करते। उसने देखा जब सब सो गए हैं, वो चूहा आता है मंदिर के कोने से, क्योंकि मंदिर में बड़ी गंदगियां होती है। सबसे ज्यादा गंदगी भारत में देखेंगे कहां मिलेगी आपको? तीर्थ क्षेत्रों में। हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, काशी जाओ, कहीं भी जाओ, सबसे गंदगी वहीं मिलेगी। और कहां मिलेगी? मंदिरों के आसपास मिलेगी। और इसमें हम सोचते हैं कि हमें ईश्वर मिल जाएगा। देखा है कि चूहा आया। वो जो प्रसाद रखा हुआ था, मां बाप ने बोला था ये भगवान के लिए, शिव के लिए, वो प्रसाद चूहा खाने लगा। उसको हड़बड़ाहट हुआ, चूहा आकर प्रसाद खा रहा है भगवान का। फिर देखा कि चूहा तो धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ गया। खाली चढ़ा नहीं, वहां कूद रहा है, नाच रहा है। मूल शंकर सोच रहा है अभी भगवान आएंगे कि चूहा को हटाएंगे। भगवान के ऊपर कैसे कोई नाच रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, उसके सर पर चढ़ रहा है, सुसु कर रहा है। भगवान अपने आप को बचा नहीं पाते। छोटा बच्चा था, सच्चा था, बिल्कुल कोरा कागज था। उसको देखता रहा कि भगवान आएंगे, अपने आप को बचाएंगे, नहीं आए। धीरे धीरे लोगों की नींद खोली। उसने पूछा कि भगवान तो आए नहीं, रात भर जगा रहा मैं, चूहा आया था, भगवान के प्रसाद भी खा गया और उनके ऊपर चढ़ के नाच रहा था, सुसु कर रहा था, पुपू कर रहा था, कोई बचाने नहीं आया, भगवान खुद भी नहीं आए। हमारे ऊपर कॉकरोच भी चढ़ जाए, हम कितने जल्दी निकाल देते हैं, भगवान तो उतना भी नहीं कर पाए। जो अपने आप को रक्षा नहीं कर सकता, हमारा क्या रक्षा करेगा? ऐसा शिव तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई असली शिव बता दे जो सचमुच हमारा रक्षा कर सके, मैं उस शिव को पाना। ऐसे रात भर बर्बाद करके क्या फायदा, दूध बर्बाद करके क्या फायदा, प्रसाद बर्बाद करके। मूल शंकर चल पड़ा असली शिव की खोज में, असली प्रभु की खोज में। पूरे जीवन लगा दिया, हजारों आश्रमों में गए, लाखों आश्रमों में, गुरुओं के पास, स्वामियों के पास, आचार्यों के पास पूछा, ज्ञान लिया, शास्त्र पढ़ा, योग किया, साधनाएं की, हर जहां मौका मिला, हिमालय की चोटी से लेकर के भारत की समतल जमीन तक, जहां जहां सुना कि वहां पहुंचे हुए गुरु हैं, बाबा हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, सब जगह गया। अभी आपके आने से पहले, हवन से पहले भजन चल रहा था स्वामी दयानंद के जीवन पर। और इसी यात्रा में उन्होंने देखा भगवान पाना तो दूर की बात है, धर्म के नाम पर क्या क्या लीलाएं होती हैं, क्या क्या गंदी चीजें आश्रम के अंदर होती है, बाहर कितना साफ सफेद दिखता है, अंदर कितना गंदगी भरी पड़ी है। इन साधुओं में, सन्यासियों में, बाबाओं में, आचार्य, कितनी गंदगियां भरी पड़ी है। को सच्चे ज्ञान की तलाश में जाते जाते कहीं नहीं मिला। पहुंचा कहां देवियों सज्जनों, मथुरा में पता चला ये गुरुओं के ढूंढते ढूंढते सैकड़ों गुरुओं की शिक्षा लेते लेते पता चला मथुरा में एक कोई बाबा नहीं गुरु नहीं है, वैसे विद्वान आदमी है पर अंधा है देवियों सज्जनों, अंधा है, उसकी आंखें नहीं। पता चला बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, कोई शास्त्रों का वेद आदि का ज्ञानी नहीं था देवियों सज्जनों, वो संस्कृत का विद्वान था, व्याकरण का विद्वान था। वहां गए, गरीब आदमी झोपड़ी में रहते थे, गुरु थे लोग जो मथुरा में, जो जिनको संस्कृत वगैरह सीखना था, व्याकरण सीखना होता था, वो आते थे। तो वो भी गए, दरवाजा खटखटाया, रात का समय था, गुरु ने अंदर से बोला झोपड़ी से कौन हो? दयानंद ने बोला तब मूल यही तो जानने के लिए ढूंढ रहा हूं कि मैं कौन हूं। नाम से तो लोग मुझे मूल शंकर बोलते हैं पर मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। विरजानंद के साथ उनका परिचय हुआ, उन्होंने एक शर्त रखा कि मैं तुम्हें तभी पढ़ाऊंगा जब तुम अपने सारे पढ़े हुए शास्त्रों को यमुना में बहाओगे। वो पुराना जो कुछ तो पढ़ पढ़ के आए हो, बाबाओं से, मंदिरों से, आचार्यों से, पंडित से, जहां सब विद्या को छोड़ोगे, सब शास्त्रों को पानी में बहाओ, तब मैं शुरू करूंगा तेरी पढ़ाई। दयानंद ने शपथ ली और सीखा, क्योंकि जब तक आपका दिमाग कोरा नहीं होगा आप कोई रिवोल्यूशनरी नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप कोई सच्चा ज्ञान को तब तक नहीं ले सकते हो अगर गोबर पहले से ही भरा पड़ा हो आपकी कटोरी में, तो आप खीर का स्वाद नहीं ले सकते हो। अगर अधपक्के ज्ञानों से आपका दिमाग भरा हुआ हो तो आप कभी सच्चे ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। मैं भी अनुभव करता हूं, आप भी करते हैं, सारी दुनिया करती है। ये विरजानंद समझा हुआ टीचर था, शिक्षक था, उसका शर्त था अगर कुछ करना चाहते हो, दिल में तड़प है, जानना चाहते हो, ये कोरा चीजों को फेंको, ये अधकचरे शास्त्रों को फेंको, असली शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, दर्शन शास्त्र पढ़ो, धर्म शास्त्र पढ़ो, और एक सही दूसरे एंगल से पढ़ो, दूसरे व्यू पॉइंट से पढ़ो। एक अंधा आदमी ने रोशनी दी और वही रोशनी आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया को बदलने में सहायक हुआ, रिलीजियसली, सोशियली। और वही दयानंद जी का वो शिवरात्रि के दिन से जो उनके अंदर वो भाव जगा कि मुझे वो सही शिव की तलाश करनी है, ये शिव की मूर्ति के द्वारा, पिक्चर के द्वारा नहीं, जो किसी को, जो अपने आप को भी बचा नहीं सकता, इतने बड़े यूनिवर्स को क्या बचाएगा, मुझे इस संसार को बचाने वाले परमात्मा शिव, ईश्वर रुद्र की तलाश है। और उन्होंने उसको ढूंढा, पाया, और उस पाए हुए ज्ञान को फैलाया। उस फैलाने के लिए जिस संस्था का नाम रखा वो आर्य समाज है। मुझे नहीं पता आर्य समाज में आने वाले मेंबर कितना स्वामी जी के विचारों को मानते हैं, पालते हैं, आचरण में लाते हैं, इवन जानते भी हैं, क्योंकि ये डाउटफुल है। पर आर्य समाज बना इसीलिए था कि लोग सच्चे शिव को पा सके। जिस दिन आप सच्चे शिव को पा जाओगे फिर ना ये जात पात रहेगा, ना ये डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, ना ये धर्म के नाम पर ये हरकतें होंगे। आखिर में एक ऋग्वेद का मंत्र कह के समाप्त करेंगे, योजागारतम ऋचः कामयन्ते, योजागारतम सामानियन्ति, योजागारतमयम् सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकः। शिवरात्रि को जागरण रात्रि बोलते हैं ना, रात भर जगना पड़ता है, फिजिकली आप जागते हैं। ऋग्वेद कहता है जो जागता है, नॉट फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, जिसके अंदर अवेयरनेस है, वो भी उसी को ही ऋग्वेद उसी की कामना करता है, ऋग्वेद उसी को चाहता है, मतलब उसी को ही ऋग समझ में आता है। साम भी उसी के पास जाता है क्योंकि वही समझ सकता है सामवेद क्या है, और उसी के पास जाकर सामवेद कहता है मैं तुम्हारा बनना चाहता हूं, तुम मुझे एक्सेप्ट करो। हम तो शास्त्रों को समझने की कोशिश करते हैं, गुरुओं के एक गुरु से दूसरे गुरु ढूंढते रहते हैं, पर जो जगा हुआ आदमी होता है वेद खुद उसके पास जाते हैं, कहते मुझे हम अपना लो, तुम्हारे बिना हमारी गति नहीं है। पर उसके लिए हमें जगा हुआ आना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। और वैसा ही एक व्यक्ति स्वामी दयानंद, जब भी आप कोई रिवोल्यूशनरी काम करते हैं, ऐसा कोई रेडिकल काम करते हैं जो समाज को बदले, प्योर ट्रूथ को लाना की कोशिश करते हैं, तो समाज में हलचल मचता है, ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग आंख मूंद करके रहना पसंद करते हैं रेगिस्तान में, शुतुरमुर्ग की तरह, उसमें ज्यादा झंझट नहीं है, लाइफ आराम से चल जाता है। क्या फर्क पड़ता है झूठ है सच है, किसको पता ईश्वर है नहीं है, हमें कोई ईश्वर की चिंता थोड़ी ही है, बस मंदिर बना है चले जाते हैं, माँ बाप ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, चर्च बना है चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है ज्यादा कुछ ट्रूथ ढूंढने के लिए। पर कुछ लोग जो ढूंढते हैं उनको मिलता है, पर कहाँ मिलता है, चर्चों में नहीं, मंदिरों में नहीं, मस्जिद में नहीं, अंदर मिलता है, खुद के अंदर मिलता है, कोई बाहर दुनिया में नहीं मिलता। और उन्हीं में से स्वामी दयानंद का यही मैसेज है, तुम खुद जागे हुए बनो तो शिवरात्रि हर रात्रि तुम्हारी बन जाएगी, जैसे स्वामी दयानंद जी के बिना। आज के शुभ दिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, जो हम दो दिन पहले मनाया। आपके जीवन में कभी ना कभी शिवरात्रि आए, आज नहीं तो अगले जन्म में आए, कभी ना कभी आए, किसी ना किसी जन्म में आए, आप ही जागरूक बने, शास्त्रों को, शास्त्र आपके लिए भी तड़पे, आप शास्त्रों के लिए ना तड़पे, शास्त्र आपके मुंह में घुसने के लिए तड़पे, ज्ञान आपके पास पहुंचने के लिए तड़पे, लोग आपको माने ना माने, आप अंदर से मना हुआ हो जाएं, तो आप भी शिव के तत्व को समझदार समझ सकते हैं। इसी के साथ आज की बात को विराम देते हैं। ओम शांति।